الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ایک ہفتہ رمضان کا، اور اس میں ہم نے فوکس کیا عبادات پر. جہاں ہم عبادات کریں گے وہاں ایک اور کرنے کا کام جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے بیٹھ کے تھوڑا ٹائم غور و فکر کریں. کوئی بھی دن میں ایسا ٹائم دیکھ لیں جس میں آپ بالکل تنہائی اختیار کر سکتے ہوں، جس میں آپ فوکس کر سکتے ہوں، جس میں آپ فون کو دور رکھ کے اور پھر سوچ سکتے ہوں. اور سوچنا کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دنیا میں بھیجا ہے تو کیا میں واقعی وہ سب کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے یا نہیں کر رہی؟ کہاں کہاں میری غلطیاں ہیں، کہاں میرے اندر ابھی تک کمیاں ہیں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ مجھے فکس کرنا ہے اپنے آپ کو، جہاں میں پھسل جاتی ہوں، وہ کون سے گناہ ہیں جو میں کیے چلی جا رہی ہوں. اور بہت آنیسٹلی خود کو جواب دینا، کیونکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا، تو اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے. انسان اپنے آپ کو خود سب سے زیادہ جانتا ہے، تو پہلے تو فگر آؤٹ کرے نا کہ کہاں کہاں میرے اندر خرابی ہے. ساری دنیا کو اس وقت بھول جائیں، لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اگر میں یہ گناہ چھوڑوں گی تو کیا ہوگا، جسٹیفیکیشنز دینا، سب چیز چھوڑ دیں. پہلے تو اپنے ذہن میں لے کر آئیں وہ تمام گناہ جن کو کرتے جا رہے ہیں یا کبھی چھوڑنے کا سوچا لیکن چھوڑ نہیں سکے، اور کرتے کرتے اب تک عادی ہو چکی ہیں. تو اب وہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ سے کہیں کہ بس اب بہت ہو چکی ہے، کیا اسی طرح گناہوں میں مر جانا ہے یا خود کو فکس کرنا ہے، سدھارنا ہے. اور یہ کبھی نہ کہیں کہ بڑھاپے میں جا کے میں گناہ چھوڑ دوں گی. میں نے بہت سے بوڑھے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو اپنی زندگی میں ساری زندگی انہیں گناہوں میں پڑے رہے، وہ بڑھاپے میں بھی آ کے اسی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں. پھر دیکھیں کہ کن مجالس میں میں بیٹھ کے پھسل جاتی ہوں، کون سی ایسی کمپنی ہے جس کی وجہ سے میں یہ گناہ کر رہی ہوں، کیا ہیں وہ ٹیمپٹیشنز جن پہ آ کے میں بے بس ہو جاتی ہوں، کون سی وہ اٹریکشنز ہیں. یاد رکھیے، اس دنیا میں ہر جگہ سلپری ہے، کوئی کہیں پھسل جاتا ہے کوئی کہیں، مگر یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے خود کو بچا کے چلنا ہے. اور یہی تو تقویٰ ہے کہ میں بچ جاؤں، میں گزر جاؤں زندگی کے اس پل صراط سے حتیٰ کہ موت آ جائے. امام مالک کو جب موت کا وقت قریب آیا تھا تو فرمانے لگے نہیں نہیں، تو بیٹے نے پوچھا جب تھوڑا افاقہ ہوا کہ کیا بات ہے، میں آپ کو کلمے کی تلقین کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں. کہنے لگے شیطان میرے پاس آیا تھا اور وہ اپنی انگلیاں چبا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے مالک تو بچ گیا مجھ سے، تو میں کہہ رہا تھا نہیں 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 ابھی نہیں بچا. یعنی انسان جب تک اس کو موت نہ آ جائے وہ بچا ہوا نہیں ہے شیطان کے حملوں سے، بلکہ زندگی بھر تو شیطان انسان کو غلط راستوں پر لگاتا ہے، موت کے وقت تو اور زیادہ इसमें तेजी करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इस वक्त ये बंदा मेरे हाथ से चला गया, इसको मौत आ गई, तो बस मामला खत्म। इसलिए वो डेस्परेट हो जाता है। हदीस में आता है कि शैतान तो मौत के वक्त तो इंसान के माथे पर बैठ जाता है और कहता है अकफुर बिल्ला, अल्लाह का कुफर कर, अल्लाह का कुफर कर, ताकि इंसान किसी तरह कलमा कुफर कह दे तो उसका काम बन गया। फिर तो उसके बाद जितने भी उसने नेकियां की मियाँ, आखिरी दम पे आके अगर उसने कुफर कर दिया तो सब गारत हो गया। तो शैतान इंसान के पीछे पड़ा हुआ, उसको जहन्नुम में ले जा के दम ले। लेकिन हम क्या इतने पागल हैं कि हम फिर भी अपनी जिंदगी को उसके कहने पे आग लगा रहे हैं? खुद सोचें, एक कंपनी है जिसकी सारी दुनिया में शोहरत है कि ये फ्रॉड है, ये लोगों के पैसे खा जाते हैं, और इसके बारे में आपने बहुत सुना है, कई लोगों ने आपको वॉर्न किया है, फिर भी अगर हम जाके अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसी में इन्वेस्ट कर दें तो कसूर किसका होगा? यही हाल शैतान के रास्ते पर चलने का है कि इसने तो काम पकड़ लिया है कि लोगों को जहन्नुम तक ले जाएगा, अव्वल दिन से उसने कह दिया। कितनी बार कुराने पाक में अल्लाह ताला ने शैतान की इस बात को बताया है और फरमाया कि वो आदुवु मुबीन है, खुला दुश्मन है, फिर भी हम उसके पीछे चलें तो फिर कौन हमारा कुछ सुधार सकता है? शैतान हर उस बात के ऑपोजिट लेकर जाता है जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, और हम अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ देते हैं और तोड़ते चले जाते हैं, और यही तो इसका एजेंडा है। तो ये दुआ होनी चाहिए सजदों में जाके, असलाफ जो थे ना हमारे पहले लोग, नेक लोग गुजरे, वो सजदों में दुआ किया करते थे, और बहुत आसान दुआ है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी असअलुका, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, हुस्नल खातिमा, अच्छे खात्मे की, कि यानी ये ना हो कि मौत के वक्त मुझे शैतान बहका दे। अल्लाह ताला मेरा खात्मा बिल खैर करना, खैर पे मेरा खात्मा हो। दूसरी वो दुआ ये करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुकनी तौबत नसूहा कबल अल मौत, ए अल्लाह मुझे तौफीक देना तौबत नसूह की, सच्ची तौबा की मौत से पहले। और तीसरी दुआ वो करते थे, या मुकल्लिब अल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। तो ये वो दुआएं किया करते थे इसलिए कि ये जिंदगी बड़ी कीमती है, इससे हमें एक ऐसे जहान में जाना है जहां पर कोई हेल्प नहीं होगी। अगर यहाँ पे हम मैस अप कर गए, कुछ गलत कर गए, तो उसको फिक्स करने का फिर चांस नहीं होगा। इसीलिए आप देखें अल्लाह ताला हमें इतनी इंसेंटिव देता है, इतनी दफा हमें बताता है कुरान पाक में तौबा के बारे में कि तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ पलट आओ, भाग आओ अल्लाह की तरफ। वह इंसान रियलाइज नहीं करता, क्योंकि या तो वो गुनाह छोड़ने का दिल नहीं करता, या खुद को जस्टिफिकेशंस देता जाता है, सफाइयाँ पेश करता जाता है, नहीं मैं तो ऐसे, फलां भी करता है, उसको भी ऐसे, मैं कैसे छोड़ दूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरी मजबूरी मेरा ये। लेकिन इस रमज़ान में हम सीरियसली सोचेंगे कि इनाफ इज़ इनाफ नाउ, अब बस कहीं तो ब्रेक लगे, और अगर नहीं दिल करता ना गुनाह छोड़ने का, थोड़ी देर के लिए याद करें कि जब हशर का मैदान होगा और वहां पर इन आमाल का फैसला होना जो मैं करके गई, और मैं अगर ये गुनाह साथ ले जाऊंगी तो क्या वो वक्त होगा जब जहन्नुम को घसीट के लाया जाएगा हशर के मैदान में, और उसके शोले इतनी ऊंचे जा रहे होंगे, छोटे छोटे नहीं होंगे दुनिया की आग की तरह, इतने बड़े होंगे ह्यूज प्लैनेट्स की तरह होंगे, और वो ऊपर उड़ रहे होंगे, और जहन्नुम का जो शोर होगा एक गरज होगी, हम बिजली की गरज से डर जाते हैं ना, सोचे जब जहन्नुम धाड़ेगी तो क्या हालत होगी इंसानियत की, वो जहन्नुम जिसको 70,000 फरिश्ते एक एक चेन पे होंगे उसकी, कितनी चेन्स में वो बांधी होगी, 70,000 चेन्स में उसको बांधा गया होगा, हर चेन के ऊपर 70,000 फरिश्ते होंगे, और जिन्होंने उसको पकड़ा होगा जकड़ा होगा उसको घसीट के ला रहे होंगे, और वो फिर भी बेकाबू हो रही होगी। ये ऐसा मंजर होगा कि इंसान के तस्वुर में भी नहीं कभी आ सकता, और इंसानियत का हाल क्या होगा, कुल्लू उम्मतिन जातिया, हर ग्रो जो होगा वो अपने घुटनों के बल गिर जाएगा, इंसान तब भी तो झुकेगा, ये ह्यूमिलिटी की इंतहा हो गई ना, आजी की इंतहा हो गई, इंसान ने सबमिट कर दिया उस वक्त, क्योंकि घुटनों के बल गिर जाता, पर इंसान आपको कैसा नजर आता है, किस चीज की तस्वीर नजर आता है, बेबसी की, आजी की, गिव अप कर देने की, सब अकड़ खत्म, सब अना खत्म, सब मेरी मर्जी ये खत्म, उस वक्त सबके होश उड़े होंगे, इंसान को होश नहीं रहेगा, और तब ये बुराइयां इतनी बड़ी नजर आएंगी कि मैंने क्यों कर दी। और तो और नेकों की हालत ये होगी कि वो भी घुटनों के बल गिरे हुए, कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, तो जो गुनाह लेकर आए होंगे उनकी हालत क्या हो रही होगी, तो तब भी तो सबमिट करेंगे ना, तब भी तो झुकेंगे ना, तब भी तो गिव अप करेंगे ना, तब भी तो कहेंगे अल्लाह बचा ले, बल्कि ये इतना लंबा तो कोई भी नहीं कहेगा ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, इतना इंसान खौफ ज़दा होगा, इतनी दहशत होगी इस मंजर की कि इंसान के मुंह से कुछ नहीं और निकलेगा सिवाय नफसी 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 नफसी, मेरा नफ्स मेरा नफ्स मेरा नफ्स, यानी जैसे आप देखे ना डूबता हुआ ये नहीं कहता कोई मुझे बचा ले, वो कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, इसी तरह इंसान की जुबान से उस वक्त हाय मेरी जान हाय मेरी जान के, यानी अल्लाह मुझे बचा ले, वो पूरा बोला भी नहीं जाएगा, क्या हम इसी दिन का इंतजार करते हैं गुनाह छोड़ने के लिए, क्यों नहीं हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में आ जाते, क्यों नहीं हम समझ जाते, वो जो अंदर खटकता है ना वो गुनाह है, ये जो अंदर कभी कभी आपको कचोका लगता है ना कि ये गलत है वो गुनाह होता है, लेकिन फिर इंसान थपकी दे के सुला देता है अपने आप को कि कुछ कुछ नहीं होता, इंसान ये सोचता है और उसको शैतान बड़ी अच्छी ताबीलें देता है कि कुछ नहीं होता अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला उस दिन कहते कि तुमने मेरे रहम का नाजायज फायदा उठाया, या तुम गुनाह करते चले गए और ढीठ बन के पता भी है कि ये गलत है फिर भी करते जाते हैं, और वो जहन्नुम इतनी गुस्से में होगी उस वक्त, क्यों, इसी वजह से कि वो बर्दाश्त नहीं करती कोई अल्लाह की नाफरमानी करे रब्बुल आलमीन की, वो कहती मैं ऐसे नाफरमानों को छोड़ूंगी नहीं जिन्होंने मेरे रब की नाफरमानी की, मैं तो इनका सफाया कर दूंगी, तो इंसान सोचे कि उस दिन को जहन में लाए, अपने आप को खड़ा करें वहां और सोचे कि वो दिन कैसा होगा और उस दिन मैं क्या करूंगी, अल्लाह ताला ने फरमाया वकुलिल हक्कु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। सूरह कहफ पढ़ते हैं ना आपने, कल भी पढ़ी होगी, जुमे का दिन था, उसी में क्या कभी ये समझ के पढ़ा कि आप कह दें कि ये हक आ गया मेरे रब की तरफ से, जो चाहे अब माने जो चाहे ना माने। लेकिन फिर याद रखना इन्ना आतदना लिज़ालिमीना नार, हमने जालमों के लिए ऐसी आग तैयार कर रखी है, अहाता बिहिम सुरादिकुहा, वो आग ऐसी है कि जो उनको घेर लेगी चारों तरफ से। वही यस्तगीसु युगासु बिमा इनकल मुहल यश्विल वुजूह बिस शराबु वसाअत मुर्तफका। अगर वो पानी मांगेंगे, फरियाद करेंगे, तो उनकी फरियाद कैसे पूरी की जाएगी उस पानी से जो तेल की तिलछट की तरह जो चेहरे को भून देगा। बड़ा ही बुरा पानी है वो, बड़ी बुरी आरामगाह है, जिसको रब कह देना अल्लदी यसलन नारल कुबरा, नारे कुबरा जिसको रब कह दे, कितनी बड़ी आग होगी। आप इमेजिन करें, एक बच्चा अगर कहता है ना बड़ी आग लगी हुई है, तो वो उसकी सोच है, जितनी उसकी जहन है वो उसके मुताबिक कह रहा है, तो आप बहुत भी सोचेंगे तो कितनी बड़ी, अच्छा भाई एक कमरे जितनी होगी। कोई बड़ा आदमी कह दे बहुत बड़ी आग है, तो आप कहेंगे हाँ वाकई फिर बड़ी होगी, ये एडल्ट कोई कह रहा है। कोई फरिश्ता कहे तो उसके मुताबिक, लेकिन रब्बुल आलमीन कहते तो सोचिए फिर वो कितनी बड़ी आग होगी। और यातिल मौत मिन कुल्ली मकान, मौत उनको हर तरफ से आ रही होगी, वमा हू बिमय्यित, लेकिन वो मर नहीं रहे होंगे। ये नारुल्लाहिल मूकदा है, जिसको जो अल्लाह की आग जिसको उसने भड़का है। तो ऐ इंसान कैसे तू गाफिल हो सकता है, कैसे हम सोच सकते हैं कि हम गुनाह पे गुनाह करते रहे, कुछ नहीं होता जी कुछ नहीं होता, कैसे हम इवन अफोर्ड कर सकते हैं। और याद रखिए अल्लाह ताला की कोई मजबूरी नहीं है कि उसने माफ करना ही है, बल्कि कुरान बार बार कहता है वो जिसको चाहे माफ करे, जिसको चाहे पकड़ ले, चाहे तो किसी की छोटी सी चीज को पकड़ ले, चाहे तो किसी के बड़े सी बड़े गुनाह को माफ कर दे। लेकिन इंसान बेखौफ तो ना हो, इन्ना आज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा, तेरे रब का अजाब ऐसी चीज है जिससे डरा जाए, डरने के लायक है। मैं अक्सर ये बातें नहीं करना चाहती, इसलिए कि लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं जी हमें डराए नहीं, मगर हमेशा मीठी मीठी गोलियां काम नहीं देती, कभी तो डरना जरूरी है। और ये जो खौफ है ना, ये भी बड़ी नेमत है, इसलिए कि जिसको ये खौफ लग जाए ना, फिर वो अल्लाह के आगे रोता है, फिर वो अपने गुनाहों की माफी चाहता है, फिर वो कहता है अल्लाह मुझे इस आग में ना कभी डाल। फिर वो इसको सीरियस लेता है, जानते हैं हमारे आंसू क्यों नहीं आते, जानते हैं हम रातों को उठ के क्यों नहीं रोते, जानते हैं हमारे गुनाह में क्यों नहीं सताते, इसलिए कि हम ना डर हो गए। हमें ऐसी कोई बात सुननी पसंद ही नहीं जिसमें कोई डरावा हो, हम कंफर्टेबल हैं और कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, हम जरा भी बेचैनी या परेशानी नहीं चाहते कि हमारे गुनाहों की वजह से हमें कोई परेशानी हो। जबकि एक सहाबी थे, जहन्नम के खौफ की वजह से जानते हैं उनका जिगर फट गया, लिवर फट गया था। तो वो इतना खौफ खाते थे, लेकिन उनके तो नेकियां कितनी थी, हमारे पास तो वाकई इतने गुनाह हैं कि हमें रोना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माफ करते, वरना जहन्नम तो हम नहीं सह सकते। हमारी भी कभी आंखें फटी आंसुओं से, हालांकि हमारे गुनाह उनसे कहीं ज्यादा है। अल्लाह ताला ने तो नेकों की ये सिफत बयान की है, उनकी ये क्वालिटी होती है कि अपने रब के अजाबों से डरते हैं, क्योंकि हसन बसरी भी फरमाते हैं कि मोमिन जो है वो निफाक से डरता है, मुनाफिक जो है वो रिलैक्स रहता है, उसको नहीं फिक्र होती। तो हमें अल्लाह के अजाबों से डरना चाहिए, दुनिया की आग में ही उंगली डाल के देखे, थोड़ी देर के लिए भी इंसान नहीं डाल सकता। एक बुजुर्ग फरमाते हैं ना, अपने हाथ को आग के ऊपर रख के कि ए नफ्स, किस गुनाह ने तुझे इस पे आमादा किया, यानी वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप ये कह दें कि हाँ मैं आग बर्दाश्त कर लूंगी लेकिन मैं ये गुनाह नहीं छोड़ सकती। अमास पर हम अल्लाह ताला फरमाता है कितना सब्र है इनका आग पे, ये बर्दाश्त कर लेंगे इसको, जबकि वो इस दुनिया की आग जैसी तो है ही नहीं, इससे 70 गुना ज्यादा है और काली स्याह है, और ये जिस्म भी ये नॉर्मल नहीं होंगे, इतना बड़ा जिस्म होगा, इतना बड़ा ताकि जितना बड़ा जिस्म होगा उतनी तकलीफ ज्यादा। इससे अंदाजा कर लें कि एक दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर होगी तो बाकी जिस्म कितना बड़ा होगा। तो हमने ये फैसला करना है इस रमजान में कि क्या इसी तरह रहना है, तो चलते रहे, मगर फिर ना क्या ना किसी ने बताया नहीं था, और या फिर हमने अपने आप को बदलना है, होश करना है, क्या हो गया हमारी अकलों को, हमारी मातमारी भी है कि हमने नाफरमानियों पे कमर बांधी भी और एहसास ही नहीं है। हमारे पास कितना अच्छा चांस है कि इन रातों में अल्लाह ताला जहन्नुम से आजाद करता है लोगों को, इफ्तार के बाद दुआएं कबूल होती हैं, तो हम अल्लाह ताला से मांगे जहन्नुम से आजादी, ये बताएं हम कितना रोते हैं जहन्नुम का सोच के, कितना रोते हैं ये कहते हुए अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कितना रोना आता है। दुनिया की फिक्रों पे तो आता है, दुनिया की परेशानियां होती हैं, बच्चे को नौकरी नहीं मिली, बेटी की शादी नहीं हुई, इन चीजों के ऊपर बड़ा रोना आता है, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, बहुत हर्ट हो गए, लेकिन क्या ये भी कोई चीजें हैं जिनके ऊपर इंसान दुखी हो? इससे बहुत बड़ा मसला है हमारे आगे जिसकी हमें फिक्र करनी है, और जिसके लिए हमें आज बख्शिश मांगनी है, और जिसके लिए हमें अपनी जिंदगी को बदलना है। तो अल्लाह ताला ने हमें अभी चांस दिया हुआ है, अभी हम जिंदा हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इब्ने जौजी फरमाते हैं कि अगर कब्र वालों को पूछा जाए कि उनकी क्या ख्वाहिश है, तो वो एक दिन रमजान का मांगेंगे, सिर्फ एक दिन, और हमें मिले में ये दिन बड़े कीमती हैं, इनमें बख्शिश मांगे, इनमें अल्लाह ताला के आगे रोएं, इनमें अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करें, इस इनमें इरादा कर लें कि मैंने गुनाह छोड़ने हैं, जो हर एक की अपनी अपनी कुछ वीकनेसेस हो सकती हैं, हर एक की अपने गुनाह हो सकते हैं, अपने अपने गुनाहों को सोचें, हम दूसरों के नहीं, अपने आप पे सिर्फ फोकस करें। आज की जो दुआ है वो भी इसी से रिलेटेड है, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाई थी कि जब तशहुद में बैठते हैं आप, दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, तो जो दुआएं मांगनी है उनमें एक ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाई। दुआ भी बड़ी आजी है और एतराफ है अपने गुनाहों का, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कथीरा, ए अल्लाह मैंने अपनी जान पे बड़ा ही जुल्म किया, बहुत ज्यादा, क्योंकि गुनाह जो है वो अपनी जान पे जुल्म है, किसी और के साथ नहीं आप बुरा करते, अपने साथ कर रहे। वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला, ए अल्लाह तेरे सिवा तो कोई बख्श नहीं सकता, फिर ली, अल्लाह मुझे बख्श दे, मग़फ़िरतम मिन इंदिक, अपनी तरफ से मुझे बख्शिश दे दे, वरहमनी, अल्लाह मुझ पे रहम कर दे, इन्नक अंतल गफूर रहीम, बेशक के तू बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला। कभी अल्लाह ताला की रहमत को का नाजायज फायदा ना उठाई। तौबा करने वाले के ऊपर अल्लाह ताला गफूर रहीम है, ये नहीं कि तौबा ही ना करे, अल्लाह की तरफ पलटे ही नहीं और बस ये कहते रहे हो गफूर रहीम है, उसके ऊपर तो लाजिम ही है कि वो मुझे माफ करे, नहीं। और आज का जो जिक्र है ना, वो भी ऐसा है कि अगर आप इस जिक्र को 100 दफा कर लेंगे तो इससे भी गुनाह मिटते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने गुनाह चाहे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना, वो मिट जाते इस जिक्र से। और जिक्र बहुत आसान है। और जिक्र क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, बस 3 इसमें वर्ड्स हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। तो इंशाअल्लाह ताला इस जिक्र को भी करना है ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे। हर दुआ, हर वो इल्तजा जो दिल से निकली भी है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। इंशाअल्लाह ताला हमने इस वीकेंड पे, इस दिनों के अंदर ऐसा वक्त निकाल के और बैठना है और इंशाअल्लाह ताला अपने गुनाहों को सोचना है और तौबा करनी है, पलट आना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा और दोबारा याद कराती हूँ कि कश्ती मजबूत बांध ले, समंदर बड़ा ही तूफानी है, अमल बहुत सारा कर ले, क्योंकि सफर बहुत लंबा है, बड़े मरहले हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा दे और हम सबको जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा दे, जितने सुनने वाले हैं और जितने जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, अल्लाह ताला सबको जहन्नुम से आज़ादी दे दे, और हमारे खानदानों को भी और कुल मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।